मेरे नाना जी जो थे बहुत पुरानी सोच के थे, वो मुझे मेरे पापा को कहते थे कि इतने पैसे जो इसकी पढ़ाई पे लगा रहा है, ट्यूशंस एंड कोचिंग्स और इसकी कॉलेज की फ़ीस, इतने में तो लड़की की शादी हो जाती है जितने तुमने इस पे लगा दिए। बट उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी, इवन देन उन्होंने मुझे पढ़ाया। बुरी चीज़ों को भूल जाना चाहिए और अच्छी चीज़ों को याद रखना चाहिए, तो यही राइट ट्रू लव होता है।
तो पता कैसे लगता है कि ट्रू लव?
पता कैसे लगता है? अब सारी भीड़ के बीच में आपको सिर्फ एक ही बंदा है जो ऐसा अच्छा लगेगा।
आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं मैम अंजू आर्य, एंड आज हम बहुत सारी अलग अलग टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। मैम हमारे साथ वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करेंगे, हम कैसे वुमेन्स जो मैरिड वुमेन्स होते हैं अपने वर्क लाइफ बैलेंस लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, एंड विल ऑल्सो टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स, मैम एंड सर का रिलेशनशिप एंड हाउ इट हैज सस्टेन्ड वेरी ब्यूटिफुली फॉर 30 ईयर्स। सो तो हम सब उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कि आपकी जर्नी क्या है, सो हाउ वॉज योर लाइफ जर्नी टिल नाउ?
ओके, आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन ए बिजनेस क्लास फैमिली, एंड उस फैमिली में फीमेल एजुकेशन का इतना सिस्टम नहीं था, तो उन लोगों को था उस टाइम पे, आज से 30 ईयर्स या 35 ईयर्स पहले, उनको था कि ठीक है एक बेसिक एजुकेशन दे दी और उसकी शादी कर दो। तो जो मेरे पैटर्नल साइड पे फैमिली मेम्बर्स थे, तो मुझे चंडीगढ़ हॉस्टल में एडमिशन लेना था 30 ईयर्स बाद, तो फैमिली वाले मान नहीं रहे थे, बट माई फादर एग्रीड। उन्होंने इंसिस्ट किया कि नहीं, शी इज़ क्वाइट इंटेलिजेंट एंड शी विल गो फॉर द हायर स्टडीज। तो दैट वॉज द फर्स्ट टाइम कि हमारे घर से कोई लड़की जो थी वो हॉस्टल में पढ़ने के लिए गई थी चंडीगढ़ फॉर अ ईयर, तो उन्होंने मेरे पे बिलीव किया एंड दिस इज़ द रिजल्ट टुडे।
अच्छा, तो आपकी कॉलेज लाइफ की बात करो, आपको कॉलेज लाइफ कैसी थी?
कॉलेज लाइफ वॉज गुड, फन, एंड कॉलेज लाइफ में मैं नवीन से मिली थी।
अच्छा,
एंड तो ऑलमोस्ट 30 ईयर्स से जानती हूँ, बिकॉज मुझे ये लगा कि मतलब उस एज में आपको बहुत सारे क्रशेस भी होते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं आपकी लाइफ में, मिलते भी हैं, बट ही वॉज द पर्सन जो मुझे पहली बार में ही लगा कि ही कैरीज द सेम टेस्ट जो मेरे हैं। मतलब बेसिकली आई बिलोंग टू आर्य समाज, तो वो आर्य समाज को भी उतना ही फॉलो करते हैं, एंड रिस्पेक्ट एल्डर्स के लिए, और नॉन अल्कोहलिक हैं और वेजिटेरियन हैं प्रॉपरली, स्टूडियस भी थे अपने स्टडीज़ को लेके और डेडिकेटेड थे अपने काम के लिए। सो दीज वर द थिंग्स जो मुझे लगा कि ही इज़ लाइक मी, तो तब से जानती हूँ उनको।
तो ऐसा कौन सा पॉइंट था, जैसे मैं पहले आपके और सर के रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहूँगा, कौन सा ऐसा पॉइंट था जहाँ पे आपको लगा था कि हाँ ही इज़ द वन फॉर यू?
बहुत सारे लोगों को ऐसे मैंने देखा कि मतलब ऊपर से कुछ और होते हैं, पोज करते हैं, ही इज़ द पर्सन जो अंदर से और बाहर से सेम है, और भड़ों की रिस्पेक्ट, दैट इज़ द वन थिंग। जब भी वो मेरे फादर को मिलते थे या कभी भड़ों को मिलते थे, तो उनकी आँखों में जो एक रिस्पेक्ट होती थी ना भड़ों को लेकर, जनरली मैंने आजकल के यूथ को देखा है कि फीट टच करना तो दूर, बहुत दूर दूर से नमस्ते भी प्रॉपरली नहीं करते हैं, तो ही वॉज द वन की प्रॉपरली फीट टच करना, फीट का मतलब फीट ही टच करना, घुटने पे नहीं, एंड जो उनकी आँखों में एक रिस्पेक्ट थी भड़ों के लिए, दैट वॉज द थिंग कि हाँ ये इनकी जो वैल्यूज हैं कुछ जो मेरे जैसी हैं कैरी करते हैं वो सेम, तो ये गुड इक्वेशन है।
एंड जैसे ये वुमेन एम्पावरमेंट की जो इंटायर जर्नी थी, आपने किस टाइम पे जाकर इसके बारे में, क्योंकि आप भी वुमेन एम्पावरमेंट से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी, तो कौन सा ऐसा टाइम था जहाँ पे आपने आगे सिखाना शुरू करा?
हाँ, एक्चुअली द थिंग इज कि जब मुझे पढ़ने का मौका मिला, बिकॉज ऑफ सम फैमिली फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, मेरे फादर ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए फाइनेंशियली, लोन भी एंड एवरीथिंग, कि मुझे पढ़ा सके। तो घर में मैं आई वॉज द फर्स्ट फीमेल चाइल्ड जो यहाँ तक पढ़ी हूँ, एंड तब मुझे ये था कि अगर ये मुझे ना पढ़ाते, मुझे मेरे मतलब मेरे नाना जी जो थे बहुत पुरानी सोच के थे, वो मुझे मेरे पापा को कहते थे कि इतने पैसे जो इसकी पढ़ाई पे लगा रहा है, ट्यूशंस एंड कोचिंग्स और इसकी कॉलेज की फ़ीस, इतने में तो लड़की की शादी हो जाती है जितने तुमने इस पे लगा दिए। बट उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी, इवन देन उन्होंने मुझे पढ़ाया, और मुझे लगा कि वाकई बाद में मैंने रियलाइज़ किया अपनी शादी के बाद कि ये जो पैसे शादी पे एक लड़की की लगाते हैं, तो उसकी जगह अगर हम वही पैसे एक लड़की की हायर एजुकेशन अच्छी करने के लिए लगा दें, तो वो जो लड़की है आने वाले मतलब टाइम में अपनी फैमिली को भी अच्छा एजुकेट करती है और एज वेल एज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी होती है. हाँ. लेकिन जो शादी पे किया गया खर्च होता है वो तो एक दो दिन में खर्च हो जाता है.
राइट.
तो दैट वाज द टाइम जब मैंने रियलाइज़ किया कि अगर मैं ये पढ़ी लिखी ना होती, अगर घर में कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं, अगर मैं पढ़ी लिखी नहीं होती तो मैं ये लीड लेके आगे नहीं चल exactly. सकती थी. सो आई कैन सपोर्ट माई फैमिली, माई हस्बैंड, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं एजुकेटेड थी. तब उस पॉइंट पे मुझे लगा कि ऐसी बहुत सारी फैमिलीज हैं तो जो आजकल बच्चों के सिर्फ लड़कियों की दाज के लिए इकट्ठा करते हैं पैसे कि इसके दाज के लिए जोड़ लो, ये कर लो, वो कर लो, शादी के टाइम काम आएगा. आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास थोड़े से भी पैसे हैं, थोड़ी सी भी हिम्मत है, तो उस बच्चे को, अगर उसका कैलिबर अच्छा है उस लड़की का, बच्ची का पढ़ने का, तो उसकी शादी पे इन्वेस्ट ना करो, उसकी पढ़ाई पे खर्च करो, हायर स्टडीज़ के लिए उसको प्रिपेयर करो. और जब एक लड़की एजुकेटेड हो जाती है तो उसे एक एक्सपोजर मिलता है, उसको लाइफ और दुनिया में जीने की अकल आती है, उसको पता चलता है कि क्या मेरे राइट्स हैं, वो अपने लिए लड़ सकती है, फिर उसको किसी और सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है. तो आई थिंक एक लड़की अगर पढ़ी लिखी होती है तो अपने राइट्स को जानती है, वो अच्छे से स्टैंड हो सकती है, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती है, अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकती है, अपने बच्चों को अच्छी क्वालिफिकेशन दे सकती है अगर वो खुद पढ़ी लिखी है. और उसके कंपैरिजन में देखो कि अगर एक लड़की पढ़ी लिखी नहीं है, वही अगर आपने 2-4 लाख लगाने उसकी शादी पे एक दिन में लगा के ख़त्म कर दिए पैसे, तो वो तो किसी फन में नहीं आए ना, वो तो ना लड़की को मिले. कुछ लोग कहते हैं लड़की का हिस्सा हमने शादी के टाइम पे जी उसको लगा दिया शादी पे, भाई लड़की को क्या मिला? आपने उसको खाना खिलाने में और मिलनियाँ नौगे ये सब देने में खर्च कर दिया, वो तो लड़की को भी नहीं मिला, तो लड़की तो वहीं की वहीं रह गई, ना आपने उसको पढ़ाया. सो द बेटर वे इज़ कि उसका अगर आपको कुछ हिस्सा देना है तो बेटर है उसकी एजुकेशन पे लगाओ. वो अपने लिए कल को लड़ सकती है, खड़ी हो सकती है अपने राइट्स के लिए. कल को कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको पता है मुझे कहाँ बोलना है, कितना बोलना है और क्या मेरे राइट्स हैं. तो इसी तरह हम एक अच्छा नेशन बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारी लड़कियां बेटियां पढ़ी होंगी तभी हमारा नेशन ग्रो करेगा. क्योंकि पंजाबी में कहावत है जो हमने सबने सुनी है, तीन पढ़ाया टब्बर पढ़ता है. अगर एक लड़की को आप पढ़ा देते हो वो आगे सारी फैमिली को एजुकेट कर देती है, अपने बच्चों को, हर जगह, और एक नेशन को अच्छे से हम बिल्डअप कर सकते हैं. सो दैट वॉज द आइडिया. तो मुझे लगा कि हर लड़की को पढ़ना चाहिए. तो दैट टाइम आई स्टार्टेड दिस थिंग फीमेल एजुकेशन.
राइट. एंड इसी कारण आई गेस आपने HLCO भी स्टार्ट करा था. वन ऑफ द मोटिव्स ये भी था.
दिस वाज द मोटिव कि जैसे मुझे पढ़ाई करने में मुश्किल हुई थी, मेरे पेरेंट्स ने, आई वाज हैविंग गुड लक कि मेरे फादर को समझ आ गई कि मुझे क्या चाहिए. तो मे बी अगर मेरे फादर नहीं मुझे समझ पाते तो मेरे फैमिली के इन्फ्लुएंस में आके वो भी मुझे नहीं पढ़ाते, तो मैं भी उस जगह पे होती जहाँ बाकी की लड़कियाँ थी घर की. सो आई वॉज लाइक एट दिस स्टेज बिकॉज कि मुझे पढ़ने का मौका मिला. सो मुझे लगा कि दिस इज़ द थिंग जो हर लड़की को करनी चाहिए, एक अच्छी हायर स्टडीज़, अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए अगर वो डिज़र्व करती है.
एग्जैक्टली. एंड अब कैसे जो बहुत सारे ऐसे मैरिड वुमन है जो अभी भी हाउस वाइफ है, सो हाउ कैन दे ऑल्सो स्विच फ्रॉम जस्ट बींग अ हाउस हेल्प टू ऑल्सो हेल्पिंग फाइनेंशियली एंड एक वो कॉन्ट्रीब्यूट ज़्यादा करें. आई गेस
बिल्कुल बिल्कुल
हमारी जनरेशन से आई गेस ये चीज़ गर्ल्स को समझ आ रही है कि दे हैव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ऑल्सो.
बिल्कुल.
बट जैसे जो हमारी पेरेंट्स की जनरेशन है, उनसे पहले जो जनरेशन थी, दे वर वेरी रेयर कि वो औरतों को आगे काम करने देते थे. तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस और कैसे वो जस्ट फ्रॉम बींग अ हाउस वाइफ टू ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द फैमिली इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंसेस?
कॉन्ट्रीब्यूट तो खैर करते ही हैं, क्योंकि अपने लिए एक बहुत अच्छी जर्नी होती है जब आप एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस गेन करती हैं एक लेडी, तो उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है. बात ये नहीं कि आप 5 कमा रहे हो, 10 कमा रहे हो, 8 कमा रहे हो, बात ये है कि वो जो एक कॉन्फिडेंस आपको अपने पैसे कमाने से एक लड़की को आता है, वो आपकी दुनिया ही बदल देता है, आपको दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल देता है, आपको लगता है कि मैं अकेली भी सर्वाइव कर सकती हूँ.
राइट.
ठीक है. तो आई थिंक कि आप मतलब ठीक है, पेरेंट्स ने जितना भी पढ़ाया नहीं पढ़ाया, शादी हो गई, उसके बाद भी देर आर सो मेनी थिंग्स जो आप घर बैठे अगर आपके अंदर कुछ पैशन है किसी चीज़ को लेके उसको सीखना शुरू करें. आजकल तो यूट्यूब से ही, आपको ये नहीं है कि कहीं जाना पड़ेगा. तो आपका कुछ भी जो ऐसे पैशन रहा है, चाहे वो स्टिचिंग को लेके है या सलून को लेके है, कुछ राइटिंग को लेके है, आप जितना भी कर सकते हैं आज के दिन से शुरू करें और उसको यूट्यूब से देखते हुए करना शुरू करें. और करते 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 आजकल तो काम करना आई वुड से कि बहुत ईजी है पहले के ज़माने में, क्योंकि सोशल मीडिया आपको इतना ज़्यादा सिखा देता है आपको करने के लिए प्लेटफॉर्म, मार्केटिंग एंड एवरीथिंग. और यूट्यूब से आप चीज़ें सीख सकते हो, DIY भी है, इंटीरियर्स हैं, कुछ भी आप घर बैठे ही बना के घर से भी सेल कर सकते हो.
एग्जैक्टली.
सो देर आर सो मेनी थिंग्स, बट द थिंग इज एक बार पुश लेने की जरूरत है. आपको पहचानना है कि मेरी हॉबी क्या है और मैं किस फील्ड में ज़्यादा अच्छे से कर सकती हूँ. तो द डे यू थिंक यू स्टार्ट करें उसको और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गेन करें.
एंड एक और क्वेश्चन था, मैंने ऐसे इंस्टाग्राम पे पोल डाला था, पोल कह रहे हैं वो आस्क द क्वेश्चंस डाला था, तो और उसमें एक क्वेश्चन जो आया था विच वाज कि कुछ फीमेल्स ऐसे होते हैं हु हैव दिस पर्टिकुलर माइंडसेट दैट दे आर वेरी स्केयर्ड टू कम आउट ऑफ दैट फिक्स्ड माइंडसेट. ठीक है, कि उनको है कि हाउ कैन दे स्टार्ट बिजनेस, मतलब वो इनिशियल कॉन्फिडेंस ही नहीं होता उनमें. उनको हर छोटी छोटी चीज़ों से डर लगना शुरू हो जाता है. तो हाउ कैन दे ब्रेक दैट एंड देन स्टार्ट देयर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जर्नी.
एक्चुअली है कि ये पुश अंदर से ही लेना पड़ता है. आपको करेज एक अंदर से ही लेनी पड़ती है. उसके साथ साथ हम लोग ये भी कहते हैं कि जो लेडीज कुछ करना चाहती हैं कर नहीं पा रही हैं, तो जो हमारी एनजीओ है वो सपोर्ट करती है, दे कैन कॉन्टेक्ट अस, तो वी कैन गाइड कि इस लेवल पे आप इस चीज़ के साथ ऐसे शुरुआत कर सकते हो. हमारे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, हम टाइम टू टाइम सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं तो वुमेन को इंडिपेंडेंट करने के लिए. तो उसमें आप किस लेवल पे कहाँ से कैसे शुरू कर सकते हैं हम उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस देते हैं. बट ये जो करेज है ये अंदर से ही आती है कि हाँ मुझे कुछ करना है. ये नहीं कि काम कर लिया, किचन का झाड़ू पोछा कर लिया, उसके बाद बैठ गए. अंदर से कुछ करने की जब चाह आती है तो आपको अपने आप रास्ते निकलने शुरू हो जाते हैं. तो उसके लिए फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है.
एग्जैक्टली.
दिस शुड बी फ्रॉम योर इनसाइड, मुझे कुछ करना है.
अगर करना है तो दे शुड एक्चुअली डू इट.
फिर बहुत सारे रास्ते हैं आजकल काम करने के. बाद घर से बाहर निकलने की जरूरत है. एक बार जब एक घर से का बाहर निकलते हो तो बहुत सारे रास्ते अपने आप लिंक्स मिलने शुरू. बहुत सारी अच्छी दुनिया भी है, बहुत अच्छे लोग भी हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं. तो आपको घर से एक बार तो निकलना पड़ेगा
जी. एक एक चीज ये भी कहते हैं ना कि अगर आप, जैसे वो शाहरुख खान का डायलॉग है, अगर आप कोई चीज शिद्दत से चाहो तो पूरी
कायनात उसको मिलाने के लिए जाती है.
एंड वो सच है कि अगर आप कोई चीज की तरफ स्टेप्स लेना शुरू कर देते
हैं
इट स्टार्ट्स वर्किंग.
एंड कैन यू बिलीव कि मैंने अपनी शादी से पहले सिर्फ ग्रेजुएशन करी थी.
ओके.
और ड्यूरिंग माय डिग्री ही मेरी शादी हो गई थी. 6 साल होते हैं हमारी एजुकेशन के, तो वो लास्ट ईयर और सेमेस्टर के बीच में ही मेरी शादी हो गई थी. एंड बट आई वॉज लाइक कि मुझे पढ़ना है आगे. तो मुझे अपने दोनों इश्यूज होने के बाद, आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ गैप के बाद, मैंने अपनी जो मास्टर्स थी योगा में स्टार्ट करी. देन मैंने MBA करा हॉस्पिटल मैनेजमेंट में. ये बच्चों के साथ पढ़ते पढ़ते मुझे मतलब इतना था. स्टार्टिंग में वी वर नॉट फाइनेंशियली मतलब बहुत वेल ऑफ, तो सारा काम करना, मैनेज करना, फिर अपनी जॉब पे जाना, बच्चों को देखना और उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई करना और उसके भी एग्ज़ाम्स देना, बच्चों को पढ़ाना भी. तो ये चीज़ें जब अंदर से आती हैं ना तो आप हर मुश्किल को पार कर लेते हो और किसी तरीके से कर ही जाते हो.
अभी मेरे पास लास्ट 2 questions आपके लिए. वन इज कि नॉट जस्ट फॉर फीमेल्स बट फॉर मेल्स ऑल्सो, जब वो अपने 20s में होते हैं कुछ ऐसी 3 चीज़ें जो उनको करनी ही चाहिए, एक्सपीरियंस करनी ही चाहिए, और कौन कौन सी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए वाइल दे आर इन देयर 20s.
फीमेल्स की बात करें,
फीमेल्स एंड मेल्स बोथ, लाइक जनरल अगर आप बता सकते हो. अब फीमेल्स का अलग से बता दो एंड देन एक जनरल बता दो.
क्या करना चाहिए?
हाँ हाँ,
मुझे तो ये लगता है कि दैट इज़ द गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ ना. तो एटलीस्ट आपको करियर बिल्डिंग पे ध्यान देना चाहिए आपकी. तो कुछ भी जो हो जाए, क्योंकि उस टाइम पे एक कहावत है कि या तो उस टाइम मज़े कर लो सारी लाइफ में धक्के खा लो, या उस टाइम धक्के खा लो सारी लाइफ एंजॉय कर लो. सो तो मेरे ही जो ये जो है बिलीव है कि अगर आप उस टाइम पे बहुत दिल से मेहनत कर लेते हैं किसी भी चीज़ के लिए तो सारी उम्र फिर आपको पछताना नहीं पड़ता. यू आर दैट इज़ द टाइम जब आप करियर ओरिएंटेड होते हो.
राइट.
तो यू शुड बी करियर ओरिएंटेड, दैट हर तरफ से डिस्ट्रैक्शन से दूर होते हुए अपने आप को बस ऐसे कर लो कि मुझे बस अपना गोल ही दिख रहा है.
राइट. वो जो हॉर्सेस के
लगा. बिल्कुल. एग्जैक्टली. अगर आप इस तरह से चल रहे हो तो डेफिनेटली यू विल अचीव योर गोल. और मुझे ये लगता है कि जैसे घर के काम हैं, अगर आजकल की जो मदर्स होती हैं, सिर्फ बेटी कोई तेरा ब्याह होएगा, ब्याह तो बाद तू सौर्या मल जाएंगी, तेनों इन्ना आना चाहिए, मतलब दिस इज़ वॉट, ये जो पुरानी बिलीफ है, मुझे लगता है कि जितना काम लड़कियों को सिखाया जाता है उतना लड़कों को भी सिखाया जाना चाहिए. तो बोथ आर डूइंग इक्वली. आजकल सब पढ़ाई बराबर करती हैं लड़कियाँ. ये नहीं कि लड़का वही डिग्री कर रहा है तो वो ज़्यादा कर रहा है या कुछ भी, द सेम डिग्री भी गर्ल्स आर ऑल्सो डूइंग. तो द थिंग इज़ कि घर का काम लड़के को भी उतना ही आना चाहिए जितना एक लड़की को आना चाहिए. अदरवाइज क्या होता है कि मिडिल क्लास फैमिली में लेडी बाहर से काम करके भी आती है, सुबह सारा मैनेज भी करके जाती है, बच्चों को ब्रेकफास्ट, नाश्ता, घर का सारा काम अगर मेड से कराना तो वो भी उसकी ड्यूटी है कि वो सारा करवाना है, बच्चों को पैक करके देना है टिफ़िन और कर करके ऑफिस का काम, फिर घर जाके फिर वहाँ पे खड़ी हो जाती है डिनर का टाइम और हस्बैंड आके बैठ जाते हैं, हाँ भाई क्या है डिनर में। तो ये मुझे कुछ इंडिया का ऐसा सिस्टम है मुझे लगता है, तो मुझे लगता है कि ये थॉट प्रोसेस अब थोड़ा चेंज होना चाहिए। एवरी वन शुड नो द वर्क, किचन वर्क, तो हर बंदे को थोड़ा 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 सीखना चाहिए अपनी मदर से, चाहे वो मेल है या फीमेल है।
जी, एंड आई गेस पहले लाइक I went to Mumbai when I was 17 ताकि 3 months के ना डिप्लोमा कोर्स के लिए गया था। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, आई डेंट न्यू एनी थिंग अबाउट कि अकेले रहते तो क्या करते हैं, यू नो उस टाइम पे मम्मा की इंपॉर्टेंस समझ आती कि यार मम्मा तो ये भी करते थे, ये भी करते थे, ये भी करते थे। आई रिमेंबर वो 3 months का फेज ऐसा था फिर आई लर्न अ लॉट अबाउट कि हर चीज़ पहले से सीख कर जानी चाहिए थी, मुझे बहुत फायदा होता। Do I learned after that? उसके थ्रू ही सीख गया।
आपको इंडिपेंडेंटली रहना आना चाहिए।
That is very important.
आपको घर के काम आने चाहिए। Everybody should learn about that. तो these are the basic thing जो हर किसी को आनी चाहिए। और अपने आप में इतना सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए आपको।
गर्ल्स के लिए भी बॉयज के लिए।
हाँ, दोनों के लिए। ये नहीं है कि जेंडर वाइज नहीं है कि गर्ल्स को ही आना चाहिए तो बॉयज को नहीं, दोनों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए और इक्वली कंट्रीब्यूट करना चाहिए घर के काम।
एंड लास्ट क्वेश्चन विच इज आपके एंड सर के रिलेशनशिप को 30 years हो गए, सो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट टू सस्टेन अ रिलेशनशिप फॉर दिस लॉन्ग फ्रॉम स्टार्टिंग टू।
देखो कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता, मैं भी बहुत परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे में भी प्लस माइनस होंगे, और पार्टनर के अंदर, दूसरे पार्टनर के अंदर, हर किसी के अंदर अपने प्लस हैं, अपने माइनस हैं। अगर आप रियल लव में हो, ट्रू लव में हो, तो नो डाउट अगर एक दूसरे की गलती पकड़ते हैं या गलती करते हैं तो गुस्सा तो आता है, बट अगर आप ट्रू लव में हो तो उन चीज़ों को पीछे डाल के फिर उसको भुलाते हुए उस रिलेशन को आगे कैरी करना चाहिए। तो क्योंकि यही नहीं सोचते कि हाँ इसने ये कर दिया तो कैसे कर दिया, भाई वो भगवान नहीं है, वो भी एक इंसान है, उसके भी इमोशंस हैं, ह्यूमन जैसे नेचर होती है उसके अकॉर्डिंगली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेरे अंदर भी होंगी, कहीं मैं भी गलती कर सकती हूँ, कहीं पार्टनर भी गलती कर सकता है। तो वो अगर गलती हो गई, एक दूसरे को सॉरी बोल दी, तो उसको हमें अड़े नहीं रहना चाहिए, उन चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए फिर से आगे निकलो और पकड़े रखो सात जन्मों तक। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी डू। क्योंकि मेरी शादी को तो 26 इयर्स हुए हैं, वी वर इन द सेम कॉलेज, तो 4 years पहले से हम लोग जानते थे। बट द थिंग इज कि जो आजकल की जनरेशन और पहले की जनरेशन में ना बहुत फर्क है, बहुत सारी चीज़ों का, लाइक पहले ऐसे फोन नहीं होते थे, तो बस एक बार देख लिया कैंटीन में दूर से ही, तो काइंड ऑफ हैप्पी हॉर्मोन्स एंड यू नो थ्रिल काइंड ऑफ फीलिंग। आजकल तो झट से फोन, ये कॉल कर दो,
फेस टाइम,
मुझे लगता है वो टाइम ज्यादा अच्छा था, बहुत सही टाइम था। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें खूबसूरती एक रिश्ते की जुड़ी होती है, हमें बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए फिर से आगे बढ़ना चाहिए और पुरानी चीज़ों को, बुरी चीज़ों को भूल जाना चाहिए और अच्छी चीज़ों को याद रखना चाहिए। तो यही राइट ट्रू लव होता है।
तो पता कैसे लगता है कि ट्रू लव
पता कैसे लगता है, अब सारी भीड़ के बीच में आपको सिर्फ एक ही बंदा है जो ऐसा अच्छा लगेगा
जी।
सब पे नहीं, बट वो एक जो एक इंसान दिखता है ना, जो ट्रू लव में आप किसी के साथ होते हो तो उसकी हर चीज़ आपको अच्छी लगने लगती है और बटरफ्लाइज इन द स्टमक एंड एवरीथिंग,
इवन आफ्टर 30 इयर्स।
या हमने स्टार्टिंग में जब मैं नवीन को फर्स्ट टाइम मिली तो हमने ऐसे नहीं कि फर्स्ट टाइम में ऐसे बोल दिया या कुछ ऐसे, तो स्टार्टिंग में वी स्टार्ट एक्सचेंजिंग यू नो नोट्स नहीं, दैट वॉज काइंड ऑफ एक टॉपिक देते थे एक दूसरे, कैंटीन में बैठते थे चाय पीने के लिए, अच्छा आपका रिलीजन के बारे में क्या मतलब थॉट प्रोसेस है, मेरा ये है, आपका ये, फिर हम उसको क्या करते थे, आप भी लिख के लाना, मैं भी लिखूंगी, फिर हम उसको चार चार पाँच पाँच पेजेस पर लिखते थे फिर नेक्स्ट एक्सचेंज करते थे, अच्छा आपका रिलीजन के बारे में ये है, मेरा ये है, फिर आपका करियर के बारे में क्या है वो एक्सचेंज किया, फिर एजुकेशन के बारे में क्या है, आपकी फैमिली में और कौन कौन है उसके बारे में आप क्या क्या सोचते हो, तो मतलब कीप ऑन एक्सचेंजिंग दोज थिंग्स माइन्यूटली, बहुत पाँच पाँच छः छः पेज के लंबी लंबे इतने कि आपका थॉट प्रोसेस क्या है, मेरा कैसा है, एक्सचेंज करते रहते थे, फिर घंटों बातें करते रहते थे किसी ना किसी टॉपिक पे, ये नहीं था आजकल की तरह नहीं था तो बहुत देर ऐसे ही चलता रहा, हम एक दूसरे को लिख लिख के नोट्स इसी चीज़ों के ऊपर देते थे, तो आप क्या सोचते हो लाइफ का, करियर का प्लान क्या करते हो, मैं ये सोचती हूँ कैसा घर होना चाहिए कैसा ही, मतलब ये चीज़ें छोटी छोटी थी, बहुत इन्जॉय करते थे उन चीज़ों को लिख के, हम लोग शेयर करते रहते थे। फिर 8-9 महीने के बाद देन एक बार नवीन ने ऐसे प्रपोज किया था, तो देन आई वॉज लाइक शॉक्ड कर नो डाउट, मुझे अच्छे लगते थे बट मैंने कुछ बोला नहीं, मैं कभी मेरे पापा तो बहुत स्ट्रिक्ट है उनसे परमिशन लेनी होगी, अगर वो हाँ बोलेंगे तो हमारा रिश्ता आगे कैरी होगा, अदरवाइज नहीं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से थे एंड एज वेल मेरे फादर के लिए हमारी बहुत रिस्पेक्ट थी कि भाई जो वो करेंगे, मुझे ये विश्वास था कि वो मेरे लिए जो सोचेंगे वो बेस्ट ही सोचेंगे, उनसे ज़्यादा अच्छा मेरे लिए कोई नहीं सोच सकता, नो डाउट यू आर बेस्ट बट उनकी स्टैंप लगवाना ज़रूरी है, सो दिस वॉज अ थिंग, तो उन्होंने भी बड़ी आसानी से मान लिया बिकॉज उनको भी सारी चीज़ें वो गुण नज़र आते थे उसमें कि आज तक नॉन अल्कोहलिक है, वेजिटेरियन है, नॉन स्मोकर है, आज तक टच नहीं करा, संडे के संडे हवन करना, पूजा करना, रिस्पेक्ट एंड एवरीथिंग, डेडिकेशन फॉर द वर्क, एवरीथिंग शी हैज, तो उनको भी पसंद है और आज तक वो बहुत पसंद करते हैं।
ग्रेट, तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस पॉडकास्ट का एंड आई होप आपको मजा आया हो इस पॉडकास्ट में,
थैंक यू सो मच, सी यू सून,
यस यस आप जल्दी आओगे तो हम फिर किसी और टॉपिक के बारे में पॉडकास्ट बना सकते हैं, एंड अगर आप कुछ एंडिंग नोट्स कुछ कहना चाहते हो पॉडकास्ट पे आप कैमरा में देख के बता सकते हो।
एंडिंग नोट्स यही है कि आजकल के यूथ के लिए मैं कहना चाहूंगी कि छोटी छोटी चीजों से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हो, आजकल बहुत डिस्ट्रैक्शन है,
एग्जैक्टली,
सो इन छोटी छोटी चीज़ों में ना फंसते हुए अपने करियर की तरफ इस एज में ध्यान दें, क्योंकि ये आपकी लाइफ का एक गोल्डन पीरियड है, है ना, तो ये एक बार अगर निकल जाएगा, 4-5-6 साल निकल जाएंगे तो ये टाइम दोबारा नहीं आने वाला है, तो द थिंग इज हर तरह की डिस्ट्रैक्शन से दूर करते हुए अपने आप को फोकस्ड कर लो, नो डाउट इन्जॉय भी करो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लाइफ इन्जॉय नहीं करो, बीच में ट्रैवल करो, ट्रैवल करना अच्छा लगता है तो करो, बट काम के टाइम पे सिर्फ काम, फिर ये नहीं कि इधर उधर इधर उधर इधर लेट गए उधर लेट गए, यू शुड बी डेडिकेटेड टू योर वर्क, अगर ये 5-6 साल आप अपने अच्छे से करियर में लगा लेते हो तो आने वाला टाइम आपका है।
राइट, सो थैंक यू एवरी वन, वी हैड अ ग्रेट पॉडकास्ट, सो सी यू सून,
बाय, थैंक यू,
बाय। सो दिस वॉज एन अमेजिंग पॉडकास्ट विद डॉक्टर अंजू आर्य मैम, बहुत ही अमेजिंग कॉन्वर्जेशन, हमने वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करी, करियर ग्रोथ के बारे में बात करी एंड रिलेशनशिप्स के बारे में बात करी, ऐसे ही डीप पॉडकास्ट सुनने के लिए सब्सक्राइब टू द एक्टोफीलिया शो सो दैट यू कैन कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।